किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चलते फिरते कोई रिश्ता बना और फिर वो रिश्ता गहरा और प्यारा होता चला गया, हमारे दुख सुख का सहारा, हमारी आस बन गया? सुनिए ऐसी ही एक कहानी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द्वारा लिखी हुई ट्रेन मामा। वाचन है निधि बासु का। किरण को घर में बांध कर रखना वैसे ही बहुत कठिन होता है, उस पर इस लॉकडाउन और डिस्टेंसिंग ने तो और आफत मचा रखी थी। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, इस उक्ति को किरण ने मानो चरितार्थ करने का बीड़ा उठाया हुआ था। उसकी सामाजिक सक्रियता यानी सोशल एक्टिविज्म घर के बाकी सदस्यों पर भारी पड़ती थी। सभी उससे भयाक्रांत रहते थे। बच्चे तो अक्सर कहते थे, ये मम्मी ना हमारे घर की पीआरओ हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि किरण के इस संपर्क का घर को कोई लाभ नहीं होता था। उस दिन प्रथा की सहेली को, जो लॉकडाउन के कारण जयपुर में फंस गई थी, भोपाल लाना किरण के कनेक्शंस के कारण ही संभव हो पाया था। उस सहेली के माता पिता ने कितनी दुआएं दी थी किरण और प्रथा को। किरण के मुंह बोले भाई, भाभी, दीदी, जीजाजी, भांजे, भतीजी, इनकी सूची खासी लंबी थी और वे पूरे भारत में फैले हुए थे। सबसे मजे की बात यह थी कि किरण का संदेश मिलते ही किरण के हुक्म की तामील में लग जाते थे। हम सबकी उदासीनता देखकर किरण कभी कभी तो चिढ़कर कहती थी, सारे घर का काम भी देखो और ऊपर से ये संबंध भी निभाओ। बच्चे मम्मी की बात सुनते और मुस्कुरा कर रह जाते। मैं तो मुस्कुराने की स्थिति में भी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी रिश्तों को लेकर किरण बहुत संवेदनशील है। अब उसी दिन की बात है, लॉकडाउन के कारण सारे बाजार, सारी दुकानें बंद थी। नीचे वाली आंटी को कुछ जरूरी दवाएं चाहिए थी जो पास वाले मेडिकल स्टोर में नहीं थी। पहले किरण ने बच्चों से कार लेकर न्यू मार्केट जाने को कहा, लेकिन वहां जाने को न पार्थ राजी हुआ न प्रथा। प्रथा ने तो ताना भी जड़ दिया, फोन कर दो ना ट्रेन मामा को, उनके पास तो हर मर्ज की दवा रहती है। बात प्रथा ने मजाक में ही कही थी, लेकिन किरण को बात लग गई और उसने सचमुच प्रभात को फोन कर डाला। उसका घर हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर था और वो शहर का दूसरा कोना था। मैं सोच में था कि इस लॉकडाउन में वो कैसे दवा लाकर पहुंचा पाएगा, लेकिन आश्चर्य कि दवाई लेकर 2 घंटे के अंदर एक बंदा हाजिर था। पता नहीं उस भले आदमी ने कैसे मैनेज किया होगा ये सब। प्रथा का चेहरा लटक गया था और किरण गर्व से कह रही थी, चैलेंज मत किया करो, कमाल का है मेरा भाई। प्रथा को हार कर कहना ही पड़ गया, ओके मम्मी, हैट्स ऑफ टू ट्रेन मामा। हाँ, यही नाम दे दिया था घर के बच्चों ने उसे, और इस नामकरण की एक मजेदार कहानी भी है। कोई 5 साल पहले की बात होगी, हम दिवाली मनाने बड़े भाई साहब के यहां मुंबई जा रहे थे। पार्थ और प्रथा की छुट्टियां पहले से ही शुरू हो गई थी और वे अपनी दादी के साथ चले गए थे। दादी के साथ जाने का एक अतिरिक्त आकर्षण ये भी रहता था कि घुटनों के दर्द के कारण माँ इन दिनों रेल से यात्रा नहीं कर पाती थीं और उन्हें प्लेन से यात्रा करनी पड़ती थी, जिसमें वे अक्सर अपने साथ किसी को ले जाती, इसलिए बच्चे उनके साथ जाने के लिए हमेशा लालायित रहते। यात्रा के दौरान दादी से जेब खर्च मिलता था, सो अलग। हम दोनों पति पत्नी ही थे, इसलिए हमने भी रईसी में सेकेंड एसी में टिकट बुक करवा लिए थे। भाग्य से दोनों को नीचे वाली बर्थ मिली थी, जिससे यात्रा का आनंद दुगना हो जाने वाला था। ट्रेन शाम को भोपाल से चलती थी, इसलिए किरण ने रात का खाना और सुबह का नाश्ता साथ में रख लिया था। मेरा विचार तो था कि सुबह सुबह इगतपुरी या कल्याण में गर्मा गर्म आलू बड़े खाए जाए, लेकिन गलती ये हो गई कि ये विचार मैंने जोर से बोलकर दिखा दिया और किरण ने षड्यंत्र पूर्वक सुबह का नाश्ता भी साथ में रख लिया। ट्रेन चलने को हुई तो हमारे सहयात्री भी आ गए। एक युवा था 25-26 साल का, जो आते ही ऊपर अपनी बर्थ पर चला गया और ईयरफोन्स कान में ठूस कर लेट गया। उससे संवाद का अब कोई प्रश्न ही नहीं था। दूसरे सज्जन थोड़े उम्र दराज थे। मुझे लगा अब वे मुझसे नीचे वाली बर्थ देने के लिए आग्रह करेंगे। उन्हें मना करने का कौन सा बहाना ठीक रहेगा। इस उलझन में इतना फंस गया कि उनकी हेलो का ठीक से उत्तर भी नहीं दे पाया। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन्होंने नीचे वाली बर्थ के लिए कुछ कहा ही नहीं, बस इतना पूछ लिया, आप लोग तो थोड़ी देर बाद सोएंगे ना, जरा देर बैठ सकता हूं यहां। मैं अपनी लोअर बर्थ न देने के गुंताड़े में इतना खो गया था कि उनके सवाल का ठीक से जवाब भी नहीं दिया और किरण को मोर्चा संभालना पड़ा। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब, सीट तो आपकी ही है, आराम से बैठिए, हम लोग तो अभी सोने वाले नहीं, कम से कम 2 घंटे, किरण बोली। और वे किरण के पास वाली सीट पर बैठ गए। अब सामने बैठे थे तो बातचीत करना लाजमी था। बातचीत में मालूम पड़ा उनका नाम देवकी नंदन त्रिपाठी है और वे जल संसाधन विभाग से रिटायर्ड इंजीनियर हैं। ईदगाह मिल्स पर उनका मकान है और रिटायरमेंट के बाद किसी फर्म के लिए काम करते हैं। मुंबई फर्म के काम के सिलसिले में ही जा रहे थे। जल संसाधन विभाग सुना तो मेरे कान खड़े हो गए। पिताजी उसी विभाग से रिटायर हुए थे। हालांकि उन्हें रिटायर हुए कई साल हो गए थे, लेकिन कोई कॉमन परिचय तो निकल ही सकता था। हमें हैरत हुई कि खासी मशक्कत के बाद भी एक भी कॉमन परिचय नहीं निकला, न भोपाल का न जल संसाधन विभाग का। इस पर त्रिपाठी जी ठहाका मारकर हंसे और बोले, अच्छा है भैया, एक आध संबंध तो ऐसा हो जहां कोई पिछला इतिहास ना हो और कोई संबंध ना मिले तो ही ठीक। समझूंगा मुझे मेरा छोटा भाई भाभी मिल गए। ये बात उन्होंने इतनी आत्मीयता और निश्चलता से कही थी कि हम दोनों ही बिछ गए उसके आगे। मैंने तो मन ही मन निश्चय भी कर लिया था कि अब अगर वे मांगेंगे तो मैं अपनी लोअर बर्थ भी उन्हें दे दूंगा। बात बात में उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को कैंसर है और उनके एक ही बेटा है। पत्नी की इच्छा के कारण बेटे की शादी जल्दी करनी पड़ी। बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की एजेंसी है और उसके एक बेटी है। खाने का समय हुआ तो किरण ने उनसे खाने के लिए पूछा। बोलने लगे, नहीं नहीं, घर से खाना खाकर चला हूं, लेकिन हाँ, आपका खाना हो जाए तो उस डिब्बे में से एक लड्डू जरूर खाना चाहूंगा। उन्होंने साथ रखे गागर के पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन आपको कैसे मालूम कि उसमें लड्डू ही हैं? मैंने पूछा तो ठहाका मारकर बोले, हाजी साहब, भोपाल से कोई गागर का पैकेट लेकर जाए और उसमें लड्डू ना हो, ऐसा हो सकता है भला? बात उनकी एकदम सही थी। दरअसल हम लोग भोपाल से दिवाली के लिए मिठाइयां बनवाकर ले जा रहे थे। सारा सामान पैक कर अंदर डाल दिया था। स्टेशन की ओर आ ही रहे थे कि पार्थ की फरमाइश आई, गागर के लड्डू जरूर लेकर आना। बेटे की फरमाइश थी और श्रीमती जी का पुत्र प्रेम उमड़ आया। रास्ते में गाड़ी रोककर लड्डू बंधवाने पड़े। सोचा लक्ष्मी पूजन वाले दिन भोग लगा देंगे, लेकिन त्रिपाठी जी ने अभी ही दृष्टि भोग लगा दिया था। खाना खाने के बाद जैसे ही किरण ने डिब्बा खोलकर उनके आगे बढ़ाया तो एक लड्डू उठाते हुए वे बोले, इच्छा तो हो रही है 3-4 उठा लूं, लेकिन लूंगा एक ही, डायबिटिक हूं ना। डायबिटिक शब्द सुनकर किरण चौंकी। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, भाई साहब, शुगर है तो पूरा मत लीजिए, कुछ तकलीफ हो गई तो? वो तो हमारी पहचान नहीं है और आपने एक लड्डू उठा लिया, वरना मैं तो आपको उतना भी नहीं लेने देती। त्रिपाठी जी एकदम खिलखिलाकर हंसे। एकदम मेरी छोटी बहन नीतू की तरह डांट रही हो बिटिया। फिर आधा लड्डू डिब्बे में वापस डालकर बोले, अब बिटिया कह दिया है तो उसकी आज्ञा का भी पालन करना होगा। खाने के बाद काफी देर तक त्रिपाठी जी से गप्पे होती रहीं। गप्पों का परिणाम ये निकला कि अपना स्टेटस छोटे भाई से दामाद का हो गया और किरण ने बिटिया की जगह हथिया ली। गनीमत है कि बाप बेटी के रिश्ते में मेरी लोअर बर्थ बची रही और त्रिपाठी जी ऊपर जाकर सो गए। टाइम टेबल के हिसाब से सुबह 8 बजे मुंबई आ जाना चाहिए था, लेकिन रात को कहीं डिरेलमेंट हो गया और इस कारण ट्रेन 2-2.5 घंटे लेट हो गई। घड़ी 7 बजा रही थी और हम सोच ही रहे थे कि अभी उठें या नहीं, तभी लगा ऊपर से त्रिपाठी जी बुला रहे हैं। मैंने उनकी ओर देखा तो कमजोर आवाज में बोले, रात को जो आधा लड्डू रखा था ना, वो दे दीजिए, लगता है शुगर लो हो गई है, ट्रेन पहुंचने में भी अभी वक्त लगेगा। मैं उठूं इससे पहले ही किरण ने उठकर उन्हें लड्डू दिया और साथ में थोड़ी मठरी भी। दोनों चीजें खाने के बाद वे थोड़े संयत हुए और बोले, ऐसा हो जाता है कभी कभी, फिर थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है अपने आप। उसके बाद हम लोगों ने साथ में नाश्ता किया। किरण के टिफिन सजाने से लेकर अचार पूरी तक सबकी तारीफ करते हुए त्रिपाठी जी ने नाश्ता किया और किरण को ढेर सारा आशीष दिया। मुंबई आने से पहले हमने एक दूसरे के नंबर लिए और फिर मिलने का वादा करते हुए एक दूसरे से विदा ली। हम सभी जानते हैं कि ऐसे वादे वादे ही रहते हैं और लोग बाद में एक दूसरे को याद भी नहीं रखते, लेकिन मुंबई से वापस भोपाल लौटने के 15 दिन बाद एक दिन त्रिपाठी जी का फोन आया कि शाम को घर आना चाहते हैं। शाम को जब वे आए तो साथ में गागर से ढेर सारी मिठाई और नमकीन लेकर आए। उनके साथ उनका बेटा भी था। उन्होंने परिचय करवाया, ये मेरा बेटा है प्रभात, रॉयल मार्केट में इसकी एजेंसी है, आप कभी भी किसी भी काम के लिए कहिए, मना नहीं करेगा। अपने बेटे के बारे में बताते हुए वे गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। साथ ही प्रभात से बोले, ये किरण दीदी है और ये जीजा जी, तुम्हें बताया था ना इनके बारे में, बस अब इनका ख्याल रखना, और हाँ, पहली बार यहाँ लाने का काम मेरा, अब बाद में रिश्ता तुम ही निभाना। मुझे आश्चर्य था कि बाप बेटे के बीच बहुत अच्छा संवाद था और बेटा अपने पिताजी की हर बात का ख्याल रख रहा था। बात बात में त्रिपाठी जी ने बताया कि जब से प्रभात की माँ को कैंसर हुआ है, पिता पुत्र मित्र की तरह हो गए हैं और हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा कि पार्थ और मेरे बीच वैसा मित्र भाव कभी नहीं बन पाया। उसके बाद त्रिपाठी जी का और प्रभात का बीच बीच में आना जारी रहा। जब नहीं आ पाते तो फोन करके हालचाल जरूर जान लेते। हम लोग भी एक दो बार उनके यहां जाकर उनकी श्रीमती जी की तबीयत देखाए। हालत तो उनकी निरंतर बिगड़ ही रही थी। एक दिन उनकी मृत्यु का भी समाचार आ गया। हम लोग उनके यहां गए और जितना बन पड़ा सहयोग किया। त्रिपाठी जी के सभी रिश्तेदार आ गए थे। सब लोगों के साथ उनका संबंध और व्यवहार इतना अच्छा था कि कभी कभी हमें अचरज होता कि वे इन सबसे और हमारे जैसे जुड़े हुए संबंधों से निभा कैसे लेते हैं। पत्नी की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद त्रिपाठी जी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। पता चला उन्हें भी लिवर का कैंसर है। हम सकते में थे। हम जानकारी मिलते ही उनके घर पहुंचे। प्रभात घर पर नहीं था। प्रभात की पत्नी प्राची ने हमारा स्वागत किया और हमें त्रिपाठी जी के कक्ष में ले गई। हमें देखते ही त्रिपाठी जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वे काफी कमजोर हो चुके थे। इतनी जल्दी इतनी गिरावट देखकर हमें बहुत दुख हुआ। नहीं, यह अचानक नहीं हुआ। उस वक्त जब हम पहली बार ट्रेन में मिले थे ना, तभी इसकी आहट मुझे मिल चुकी थी। मैं टाटा इंस्टीट्यूट में दिखाने ही जा रहा था। प्रभात को भी उस समय तक कुछ नहीं बताया था। वो तो बेचारा टूट ही जाता। फिर आप लोग मिले और पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप लोगों से हमारी अच्छी निभेगी। मुझे प्रभात की चिंता ज्यादा है। मेरे जाने के बाद एकदम अकेला हो जाएगा। रिश्तेदार दोस्त बहुत हैं और सभी उसे प्यार करते हैं, लेकिन सोचा एक संबंध तो ऐसा हो जो उसका अपना बनाया हुआ हो और जहां और कोई स्वार्थ ना हो। मुझे खुशी है कि आपने प्रभात को अपने छोटे भाई जैसा प्यार दिया है। आगे भी उसे संभाल लेना। कहते कहते उनका गला भर आया था। हमारी भी आंखें नम हो गई थीं। वो हमारे त्रिपाठी जी से आखिरी मुलाकात थी जिसमें वे हमसे बात कर पाए थे। उसके बाद तो उनका बोलना धीरे धीरे बंद हो गया। बस सूनी आंखों से हमें देखते और मुस्कुराने की कोशिश करते। और फिर एक दिन उस मुस्कुराहट का भी अस्त हो गया। हम लोग प्रभात को जितना सहारा दे सकते थे देने का प्रयास करते। वो कभी अकेले, कभी प्राची और बिटिया के साथ आ जाता। हम उसकी कितनी मदद कर पाते ये तो कहना कठिन था, लेकिन वो हमारे हर मर्ज की दवा बन चुका था। जितने जिंदा दिल और समझदार त्रिपाठी जी थे, उतना ही जिंदा दिल और समझदार प्रभात भी था। बस एक बार किरण दीदी कुछ कहबर दें, फौरन वो काम हुआ ही समझो। प्रभात हमारे घर का इतना अभिन्न हिस्सा बन गया था कि इस बात का सिरा ढूंढ पाना कठिन हो गया था कि हमारे रिश्ते की उत्पत्ति कैसे हुई थी। किरण की सबसे छोटी बहन कंचन की शादी तय हुई। लड़का जयपुर से था और लड़के वालों की जिद थी कि शादी जयपुर में ही आकर की जाए। किरण तीन बहनों में बड़ी थी। किरण से बड़े भाई और किरण के बाद वाली बहन दोनों अमेरिका में थे और ऐन शादी के समय ही उनका आना हो सकता था। किरण के पिताजी दिल के मरीज थे और उनसे ज्यादा दौड़ धूप की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। कंचन की शादी वैसे ही थोड़ी देर से हो रही थी, इसलिए अब जरा सी बात पर लड़के वालों को नाराज करना भी ठीक नहीं था। लब्बो लुआब ये कि शादी की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। खर्च किरण के पिताजी और भाई ही उठा रहे थे, लेकिन सारी दौड़ धूप करके व्यवस्थाएं जमाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी। राजस्थान का राजपूत परिवार था और अपने गढ़ जयपुर में शादी करवा रहा था हमसे। व्यवस्थाओं की लिस्ट खत्म ही नहीं होती थी। शादी को अभी एक महीना बचा था और हमारी हालत अभी से खराब हुई जा रही थी। तभी ख्याल आया प्रभात का और मैंने उसे शाम को ही घर बुला लिया। सारा मामला जानकर पहले तो उसने हमें जमकर डांट लगाई कि हमने उसे पहले क्यों नहीं बताया या बुलाया, और उसके बाद शादी के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए। बात का पूरा महीना कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। किरण के परिवार वालों को भी लगा ही नहीं कि वे लड़की की शादी कर रहे हैं। वो सब इतने बेफिक्र हो गए कि एक दिन मुझे मजाक में किरण को कहना पड़ा, तुम्हारे पिताजी को याद है ना कि कंचन उन्हीं की बेटी है। सारे अरेंजमेंट्स, हमारी व्यवस्था, बारात की व्यवस्था, रिसेप्शन से लेकर ब्यूटी पार्लर, म्यूजिक, संगीत, सारी व्यवस्थाएं प्रभात ने कर दी और हम सबको इन चिंताओं से मुक्त कर दिया। कभी मदद के लिए पूछा भी तो उसने कह दिया, अरे सब हो जाएगा, आप तो शादी एंजॉय करो जीजा जी। किरण के भाई तो हमेशा से ही बाहर रहे और बस पैसे देने के अलावा उनकी और कोई सहयोगी भूमिका कभी नहीं रही। लेकिन प्रभात के कारण बाकी सब रिश्तेदार भी निश्चिंत बने रहे। जब कंचन की विदाई हो गई और घर के सब लोग रिलैक्स करने के मूड में थे, तब सबको एहसास हुआ कि शादी की सारी जिम्मेदारी जिस शख्स ने उठा रखी थी उससे तो उनका ठीक ठाक परिचय हुआ ही नहीं। सब बस उसे किरण का भाई इसी नाते से जानते थे। वे ये भी भूल गए कि किरण का भाई उनका भी तो भाई हुआ। अरे यार प्रभात, शादी की हड़बड़ी में तुम्हारा ठीक से परिचय तो हुआ ही नहीं। तुम किरण के भाई हुए तो हमारे भी भाई हुए, लेकिन तुम कब और कैसे पैदा हो गए इसकी कोई खबर ही नहीं है, किरण के बड़े भाई ने कहा। प्रभात के हमारे साथ रिश्ते की थोड़ी बहुत अंतर कथा सबको मालूम थी, लेकिन इससे पहले कि किरण या प्रभात कुछ कहते, प्रिथा बोल उठी,
ये हमारे ट्रेन मामा हैं। बड़े मामा, जैसे आपको नानी ने पैदा किया है इसलिए आप हमारे मामा हो, वैसे ही प्रभात मामा को ट्रेन ने पैदा किया है।
प्रिथा की इस मासूमियत भरी मजेदार कैफियत पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े और उस दिन से प्रभात हमारे पूरे खानदान के लिए ट्रेन मामा बन गया। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते तो ऊपर वाला बनाकर भेजता है। कम से कम ट्रेन मामा के बारे में तो ये बात सच ही साबित होती है। आप सुन रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी द्वारा लिखी कहानी ट्रेन मामा। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।